यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर और थांग महाभिक्षु के बाकी दोनों शिष्य राजा का संदेश लाने वाले अधिकारी के साथ राजमहल के दरवाजे पर जा पहुंचते हैं, जहां एक द्वारपाल तुरंत उनके आने की सूचना राजा को देता है और उनके प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर लेता है। तीनों शिष्य बिना सिर झुकाए हुए पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं। वहां जाकर वानर राजा से कहता है कि अगर वह सांचांग को अपना दामाद बनाना चाहता है तो वह उसे उपयुक्त आदर सत्कार क्यों नहीं दे रहा। यह सब सुनकर राजा डर के मारे पीला पड़ जाता है, पर फिर भी वह वानर का सामना करता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ।
जब राजा को यह पता चला कि वानर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो वह अपने ड्रैगन सिंहासन से फौरन नीचे उतर आया और परमादरणीय महाभिक्षु को हाथ से सहारा देकर बोला,
जामाता महोदय, विधाता की कृपा से ही विवाह बंधन के द्वारा हमें आपके समान श्रेष्ठ व्यक्ति को अपना संबंधी बनाने का मौका मिला है।
सांचांग ने राजा की कृपालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने सिंहासन पर लौटने का अनुरोध किया। राजा ने पूछा,
वरीयता में द्वितीय शिष्य होने का श्रेय किसे प्राप्त है?
शुकर ने और भी ज्यादा प्रभावशाली दिखने के लिए अपनी थूथनी बाहर निकाल ली और अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बताने लगा। जब राजा ने यह सब सुना तो वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसे शूकर की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। फलस्वरूप मूर्ख शूकर बेहद जोश में आ गया। वह अपना सिर हिलाने लगा, होंठ सिकोड़ने लगा, कान ऊपर उठाने लगा और ठहाका मार कर हंसने लगा। सांचांग चिंतित हो उठा कि शूकर के इस दुर्व्यवहार से कहीं राजा डर ना जाए। उसने चिल्लाकर कहा,
बाजी, अपने को काबू में रखो।
इसके बाद ही शूकर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अच्छे व्यवहार का दिखावा किया। राजा ने फिर पूछा,
और वरीयता में तीसरे शिष्य की दीक्षा कैसे प्राप्त हुई?
अपने दोनों हाथ जोड़कर भिक्षु रितात्मा ने भी अपना परिचय दे दिया। यह सब सुनकर राजा संतरस्त होने के साथ साथ बहुत खुश भी हुआ। खुश इसलिए हुआ क्योंकि उसकी पुत्री को जीवन साथी के रूप में एक जीवित बुद्ध प्राप्त हो गया था, और संतरस्त इसलिए हुआ क्योंकि उसके साथ विविध प्रकार के तीन उपद्रवी देवता वहां आए थे। जब राजा प्रसन्नता और संतरास के बीच झूल रहा था, तभी प्रधान ज्योतिषाचार्य ने अभिवेदन किया,
विवाह का मुहूर्त इस महीने की 12वीं तिथि को निकला है। यह जल मूषक दिवस कहलाता है, जिसे विवाह समारोहों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।
राजा ने पूछा,
आज कौन सी तिथि है?
ज्योतिषाचार्य ने जवाब दिया,
आज 8वीं तिथि है, जो पृथ्वी वानर दिवस भी कहलाती है। इस दिन लंगूर फल प्रदान करते हैं, श्रेष्ठ जनों को प्रस्तुत करने और उनके सुझावों को स्वीकार करने के लिए यह अत्यंत उपयुक्त दिन है।
यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने अधिकारियों को भेजकर शाही उद्यान के सभी महाकक्षों और मंडपों की सफाई करा दी। फिर उसने वहां अपने भावी दामाद और उसके तीनों प्रतिष्ठित शिष्यों के ठहरने का इंतजाम कर दिया, ताकि वे लोग विवाह भोज और विवाह समारोह तक वहीं इंतजार कर सकें। कर्मचारियों ने राजा के आदेश का पालन किया। तब राज दरबार खत्म हो गया और अधिकारी गण चले गए। जब सांचांग और उसके तीनों शिष्य शाही उद्यान में पहुंचे तो रात काफी हो चुकी थी। उनके लिए शाकाहारी भोजन का इंतजाम कर दिया गया। शूकर ने खुश होकर कहा,
आज हम लोग भोजन के सचमुच के हकदार हैं।
शाही कर्मचारी चावल और नूडल बहंगियों में भर भर कर लाए। शूकर एक के बाद एक कटोरा चट कर गया। जब उसका पेट गले तक भर गया, तब कहीं उसने खाना बंद किया। कुछ देर बाद बिस्तर लगा दिए गए और बत्तियां बुझा दी गई। फिर सब लोग बिस्तर में लेट गए। जब श्रद्धे धर्माध्यक्ष को आसपास कोई सेवक नहीं दिखाई दिया तो उसने गुस्से में चिल्लाकर वानर से कहा,
अरे ओ दुष्ट वानर उखुन, मैं हमेशा तुम्हारे ही कारण संकट में पड़ जाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि हम सीधे अपना पार पत्र पेश करने जाते हैं और तुम्हें सुसज्जित मीनार के पास जाने से रोका भी था। तुम मुझसे वहां जाकर एक नजर देखने का आग्रह क्यों करते रहे? अब देख लिया ना तुमने, जो मुसीबत तुमने खड़ी की है उससे जान छुड़ाने का भला क्या उपाय हो सकता है?
वानर ने मुस्कुराते हुए कहा,
गुरुदेव आपने भी तो कहा था, मेरे स्वर्गीय माता ने भी कढ़ी हुई गेंद फेंक कर ही मेरे पिता को चुना था और उनसे विवाह किया था। मैं आपको वहां केवल इसलिए ले गया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप अतीत की उस घटना का कुछ आनंद लेना चाहते हैं। इसके अलावा दानवीर स्वर्ण आच्छादित मठ के वयोवृद्ध भिक्षु की बात भी मुझे याद थी और मैं यह पता लगाने के लिए वहां गया था कि राजकुमारी असली है या नकली। जब मैंने कुछ देर पहले राजा को देखा तो मुझे उसकी नजर कुछ अशुभ प्रतीत हुई, पर अभी मैं यह नहीं देख पाया कि राजकुमारी कैसी लगती है।
श्रद्धे धर्माध्यक्ष ने पूछा, तुम्हारे राजकुमारी को देखने से क्या हो जाएगा? वानर ने जवाब दिया,
सुनहरी पुतलियों वाली अपनी तेजस्वी आंखों से मैं यह बता सकता हूँ कि कौन असली है और कौन नकली, कौन अच्छा है और कौन बुरा, कौन अमीर है और कौन गरीब। मुझे पता चल जाएगा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और मैं सही और गलत के बीच फर्क कर सकूंगा।
सांचांग जोर से चिल्लाया,
फालतू का मजाक मत करो, वह निश्चित रूप से मुझे अपना दामाद बनाना चाहता है, अब हमें क्या करना चाहिए?
वानर ने कहा,
12वीं तिथि को जब खुशी का मौका आएगा तो राजकुमारी निश्चित रूप से अपने माता पिता का अभिवादन करने के लिए बाहर निकलेगी। मैं पीछे खड़ा होकर उसे देख लूंगा। अगर वह सचमुच एक स्त्री हुई तो आप उसे विवाह करके इस राज्य के गौरव और वैभव का उपभोग कर सकेंगे।
यह सुनकर सांचांग बहुत ही गुस्से में आ गया। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा,
तुम भी कमाल के वानर हो जो अब भी मुझे बर्बाद करने पर तुले हो। जैसा कि उनंग ने कहा था, हम अपनी यात्रा का 97-98% भाग पूरा कर चुके हैं, फिर भी तुम मुझे अपनी धूर्ततापूर्ण वाणी से बर्बाद करने पर तुले हो। चुप रहो, अपनी दूषित जबान हरगिज ना खोलो। अगर तुमने फिर से इस तरह का दुर्व्यवहार किया तो मैं वह मंत्र फिर से पढ़ने लगूंगा, यह तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर होगा।
अब क्या था, मंत्र पढ़ने की बात सुनते ही वानर घुटने टेक कर बैठ गया और सांचांग से गिड़गिड़ा कर बोला,
मंत्र ना पढ़िए गुरुदेव, मंत्र ना पढ़िए। अगर वह राजकुमारी सचमुच स्त्री निकली तो हम लोग विवाह के मौके पर राजमहल में हंगामा कर देंगे और आपको बाहर निकाल लेंगे।
जब गुरु शिष्य आपस में बातचीत कर रहे थे तो उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि रात काफी हो चुकी है। शुकर ने कहा,
रात काफी हो चुकी है गुरुदेव, बाकी बहस कल सुबह करेंगे, अब सो जाइए, फौरन सो जाइए।
इस तरह गुरु शिष्य सो गए। जल्दी ही सुनहरे मुर्गे ने बांग दी। राजा ने राजदरबार के लिए सिंहासन महाकक्ष में प्रवेश किया। जब सभी सैनिक असैनिक अधिकारी गण राजा का अभिनंदन कर चुके तो उसने ऐलान किया,
12वीं तिथि को राजकीय भोजनशाला की ओर से एक विवाह भोज का आयोजन किया जाए। आज वसंत मदिरा तैयार की जाए और हमारे भावी दामाद का शाही उद्यान में सत्कार किया जाए।
शिष्टाचार कार्यालय को आदेश दिया गया कि वह उन तीनों प्रतिष्ठित शाही संबंधियों को अतिथि मिलन आवास में ले जाए, जहां राजकीय भोजनशाला से उन तीनों के लिए एक शाकाहारी भोज का इंतजाम करने को कहा गया। दोनों जगहों पर शाही संगीत मंडली के कुछ कलाकारों के प्रोग्राम पेश करने और उनकी अच्छी तरह देखभाल करने और वसंतकालीन सौंदर्य का आनंद उठाने का इंतजाम भी कर दिया गया। जब शूकर को यह पता चला तो वह बोला,
राज कुलश्रेष्ठ, हम लोग हमेशा अपने गुरुदेव के साथ रहते हैं, एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। चूंकि वे शाही उद्यान में मदिरा पान और स्वादिष्ट भोजन का मजा उठाने जा रहे हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं कि 2-4 रोज के लिए उन्हीं के साथ रहकर अपना मनोरंजन कर लें। तभी आपके द्वारा गुरुदेव को अपना दामाद बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यह नहीं हो सकता तो सौदा खत्म समझिए।
जब राजा ने यह देखा कि शूकर कितना बदसूरत और कटुभाषी है, किस तरह सिर और गर्दन हिला रहा है, थूथनी बाहर निकाल रहा है और कान हिला रहा है, तो उसने इस डर से कि कहीं शूकर विवाह के मौके पर रंग में भंग ना कर दे, उसकी बात मान ली।
हमारे दामाद और हमारे लिए चीन यवन देश शाश्वत शांति महाकक्ष में भोज का आयोजन किया जाए। शेष 3 महानुभावों के लिए विलंबशील वसंत मंडप में भोजन का इंतजाम किया जाए। हमें डर है कि कहीं गुरु और शिष्य को एक साथ बैठाना असुविधाजनक ना हो।
केवल तभी मूर्ख शूकर ने राजा के प्रति सम्मान दिखाया और उन्हें धन्यवाद दिया। जब सब लोग चले गए तो राजा ने अंदर के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे भोज की तैयारी करें और 3 महल और 6 प्रांगणों में निवास करने वाली महारानियों और रानियों से कहा कि वे 12वीं तिथि को राजकुमारी के लिए केश आभूषणों, केक व्यंजनों और विवाह से संबंधित बाकी वस्तुओं का इंतजाम करें। अब सुबह के लगभग 10 बज चुके थे। राजा ने एक वाहन बुलवा लिया। वह थांग महाभिक्षु को और बाकी लोगों को शाही उद्यान दिखाने ले जाना चाहता था। यह एक आलीशान उद्यान था। राजा काफी देर तक अपने साथियों के साथ उद्यान में चहलकदमी करता रहा और फूलों की बहार का मजा लेता रहा। तब शिष्टाचार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा वानर और उसके दोनों साथियों को विलंबशील वसंत मंडप में आमंत्रित किया गया, जबकि राजा थांग महाभिक्षु का हाथ पकड़कर उसे चीन यवन देश महाकक्ष में ले गया, जहां मदिरा पान और भोज का प्रबंध किया गया था। इस शानदार मौके पर नृत्य संगीत और वाद्य संगीत का भी आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।